लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रत्येक बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति अपने जीवन आचरण द्वारा सुसमाचार का साक्ष्य प्रस्तुत करे तथा प्रभु ख्रीस्त के प्रेम संदेश को जन जन में फैलाने के मिशन के प्रति वचनबद्ध रहे। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत ईश सेवक फादर कांस्टेंट लेबन्स एवं छोटानागपुर में कार्तिक कलिसे की शुरुआत पर चर्चा में हम आगे बढ़ रहे हैं। श्रोताओं, पिछले कार्यक्रम में हमने फादर लेबन्स का अपने परिवार वालों के साथ अंतिम मुलाकात के बारे सुना था। आज हम उनके जीवन के अंतिम दिन के बारे सुनेंगे, तो आइए आगे सुनते हैं। सात नवंबर 1893 की सुबह डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से फादर लेबन्स की स्थिति की जानकारी दी, जैसा कि वे सहमत हुए थे। उन्होंने उनकी मृत्यु के बारे बतलाते हुए कहा, फादर वह दिन आज है। इससे सुनकर फादर के चेहरे पर तनिक भी डर नहीं दिखाई दी, बल्कि उन्होंने शांत मन से इसे स्वीकार किया। दोपहर को वे अचानक पीले पड़ गए। वफादार परिचारक ब्रदर ने उन्हें पुकारा, फादर आप मर रहे हैं। ब्रदर ने घंटी बजाई और बगल के कमरे से फादर कोच निकले, जो बंगाल में मिशनरी थे और लुभेन के आवास में सुस्वस्थ होने के लिए रह रहे थे। उन्होंने तुरंत उन्हें अंतिम आशीष दी। फादर लेबन्स ने अपना चेहरा क्रूस की ओर किया और क्रूस को देखते देखते अंतिम सांस ली। मृत्यु के बाद भी उनका चेहरा क्रूसित यीशु पर ही टिका हुआ था। उस समय दिन के 2:30 बज रहे थे। दो दिनों बाद उनकी दफन क्रिया संपन्न हुई और उन्हें लुभेन शहर के बाहर हेवरली के कब्रस्थान में दफना दिया गया। उनके कब्र पर पत्थर गाड़कर उनका नाम अंकित किया गया। नाम के साथ उनके मृत्यु की तिथि और धम्म समाज में उनके वर्षों को भी अंकित किया गया। फादर लेबन्स अंतिम समय चाहते थे कि वे भुला दिए जाएं। उनकी यह इच्छा पूरी हुई और कुछ समय के लिए उन्हें भुला दिया गया। कब्रस्थान में फादर लेबन्स के लिए कोई सम्मान नहीं रहा। उनके जीवन के अंतिम दिनों तक बहुत कम मिशनरी और धम्म समाजी उन्हें जानते थे। वे युद्ध स्थल पर शहीद नहीं हुए थे, किंतु एक युद्ध एक निर्वासन के कैदी के समान उनकी मौत को दर्ज किया गया। उधर हजारों मील दूर छोटानागपुर में फादर लेबन्स की मृत्यु की खबर एक अनपेक्षित पेंच की तरह थी। उनकी मृत्यु की खबर सुनकर लोग हैरान नहीं हुए, किंतु दुखी और उदास हुए। इधर छोटानागपुर के मिशनरियों, फादर लेबन्स के पूर्व सहयोगियों और साथियों का मन भी भारी था, किंतु वे अपने दिवंगत सम्मानित नेता के लिए लंबे समय तक शोक नहीं मना सके, क्योंकि फादर लेबन्स द्वारा शुरू किए गए कार्य एवं मिशन की संकटपूर्ण स्थिति ने उन्हें रुकने का अवसर नहीं दिया। फादर लेबन्स के कुछ मित्र, जो उन्हें अच्छी तरह जानते थे और उनसे प्रभावित भी थे, उन्होंने दुख प्रकट किया। कुछ समय के बाद ऐसा लगा कि फादर लेबन्स पूरी तरह भुला दिए गए, किंतु फादर लेबन्स ने छोटानागपुर में जो बीज बोया था वह बढ़ रहा था। उन्होंने अपने बुलावे को अत्यंत गंभीरता से लिया था और बड़ी उदारता से उसे स्वीकारा था तथा अपने स्वामी की तरह, जिनसे वे सबसे बढ़कर प्रेम करते थे, अपना जीवन अर्पित किया। मरने के कुछ महीनों पहले उन्होंने अपने मित्र फादर डेस्मिथ को लिखा था, यदि छोटानागपुर मिशन ईश्वर का कार्य है तो यह बना रहेगा और यदि नहीं तो यह गिरकर बिखर जाएगा। एक चीज पर फादर लेबन्स ने कभी संदेह नहीं किया था कि मिशन का कार्य सबसे पहले ईश्वर का कार्य था, एक कृपा का कार्य, और एक जेसुइट मिशनरी की तरह वे सुसमाचार का प्रचार करने हेतु ईश्वर के द्वारा बुलाए गए थे। युवा पुरोहित एवं धर्म सामाजिक ने यह भी महसूस किया था कि ईश्वर की इच्छा बहुत स्पष्ट नहीं होती है, क्योंकि यह विश्वास द्वारा सामान्य मानवीय परिस्थिति में प्रकट होती है। रहस्यमय ईश्वर रहस्यमय व्यक्ति का सहयोग चाहते हैं। फादर लेबन्स एक मिशनरी थे, वे एक मिशन के साथ भेजे गए थे, वे ईश्वर के राज्य विस्तार हेतु भेजे गए थे, ईश्वर की मुक्ति लाने और लोगों को प्यार करने के लिए। एक मिशनरी सांत्वना और सुरक्षा देता, धर्म शिक्षा देता एवं बपतिस्मा प्रदान करता है और लोगों को ख्रिस्त की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इस तरह वह एक ख्रिस्त समुदाय का निर्माण करता है। फादर लेबन्स ने ठीक इसी तरह कार्य किया और अपने मिशन को विशेष रूप से पूरा किया। तोरपा में अपने मिशनरी जीवन की शुरुआत से ही फादर लेबन्स को अपने मिशन के लिए एक महान दृष्टिकोण प्राप्त था, जिसको उन्होंने कभी नहीं खोया। वे न केवल कुछ परिवारों, गांव और जिलों में ख्रिस्त समुदाय का निर्माण करना चाहते थे, बल्कि वे पूरे छोटानागपुर में ख्रिस्त कलीसिया का विस्तार चाहते थे। उन्होंने इसके लिए अथक परिश्रम किया। फादर लेबन्स की सफलता का राज, जैसा कि वे बार बार कहा करते थे, ईश्वर की कृपा थी। जब तक इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, उनकी सफलता की व्याख्या नहीं की जा सकती। कृपा मुक्त है, किंतु ईश्वर ने उन्हें एक रहस्यात्मक तरीके से अपने एक उत्तम हथियार के रूप में प्रयोग किया। ईश्वरीय एवं मानवीय सहयोग से प्रचुर फल उत्पन्न होता है, यही फादर लेबन्स के मिशन में हुआ। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत ईश सेवक फादर कॉन्स्टेंट लेबन्स एवं छोटानागपुर मिशन की शुरुआत पर एक चर्चा सुन रहे थे। इस पर हम आगे भी चर्चा जारी रखेंगे और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।
आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका कलयुग के शिक्षक, लेखिका हैं समता बोरेकर। श्रोताओं, नारी का सम्मान करना और उसके हितों की रक्षा करना हमारे देश की सदियों की पुरानी संस्कृति है। यह एक विडंबना ही है कि भारतीय समाज में नारी की स्थिति अत्यंत विरोधाभास रही है। आप टीवी पर या समाचार पत्रों में देखें, आप पाएंगे कि कोई एक ऐसा दिन न गुजरा हो जहां नारी पर अत्याचार, शोषण, बलात्कार, प्रताड़ना या हत्या की खबरें न छपी हों। ये तो कुछ ही मामले हैं जो टीवी में या समाचार पत्रों में प्रकाशित होते हैं। प्रतिदिन न जाने कितनी नारियां होंगी जो दुख पीड़ा सहती हैं। आज स्कूल कॉलेज जाने वाली लड़कियों के साथ छेड़खानी तो जैसे आम बात हो गई है, पर इसके डर से वे घर बैठे भी तो नहीं रह सकती। माता पिता को भी अपनी लड़कियों की सुरक्षा की चिंता लगी रहती है। अपनी सुरक्षा के लिए कराटे वगैरह सीखना सबके बस की बात नहीं है। स्कूलों, कॉलेजों और ऑफिसों में उन्हें खुद एहतियात बरतना जरूरी है। आज इंसान की शक्ल में भेड़िये हर जगह पाए जाते हैं। वह भेड़िया आपके साथ बैठा ऑफिस का कर्मचारी हो सकता है, आपका बॉस हो सकता है, आपको शिक्षा देने वाला शिक्षक हो सकता है, आपके साथ बस या मेट्रो में बैठा यात्री हो सकता है, आपका अपना कोई रिश्तेदार हो सकता है। हर परिस्थिति में साहस और चतुराई के साथ सभी चुनौतियों का सामना करें अपने स्वाभिमान और आत्मविश्वास को जगाएं, क्योंकि आप खुद की रक्षा कर सकती हैं। आशा है आज का नाटक विशेष रूप से हमारी युवतियों और महिलाओं का मार्गदर्शन कर सके। तो लीजिए, प्रस्तुत है समता बोरेकर की लिखी नाटिका कलयुग के शिक्षक।
ये हो गया साइंस का 7th चैप्टर। अब थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं पढ़ूंगी मैथ्स। कुशिका बेटा, मैथ्स का टेस्ट है। हे भगवान, क्या होगा कल? चलो जो भी हो, होना हो जाए। मम्मी, ओ मम्मी, मम्मी भूख लगी, मम्मी कुछ दे दो ना प्लीज।
अरे हाँ, अरे मेरी बिट्टू रानी, तेरे लिए मैंने गर्मा गर्म पराठे बनाए हैं।
अरे वाह।
हाँ, किचन से ले ले जाके, और थोड़ी देर रुक, ज्यादा चाय रख देती हूँ। वैसे थोड़े से कपड़े हैं, सुखा कर आ रही हूँ। हाँ, और बस सारा दिन क्या किताबों से चिपकी रहेगी। अरे थोड़ा सा बाहर निकला कर, थोड़ा घूम फिर लिया कर, ऐसे पूरे समय पढ़ती रहोगी ना तो सेहत पर भी उसका असर पड़ेगा। अरे देख, तेरे जो दूसरे दोस्त हैं वो भी तो एग्जाम देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरे समय बस पढ़ाई 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 करते रहे।
अच्छा ठीक है मम्मी, वैसे भी ना मैं अपने कमरे में बैठे बैठे थक गई थी। अब आप इतना कहती है ना, तो मैं ना जरा देर राशि से मिलाती हूँ, देखूँ जरा उसकी तैयारी कैसी चल रही है।
हाँ हाँ हाँ, चली जा चली जा। अरे कुशी बेटा, क्या हुआ? अरे तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? किसी ने तुझसे कुछ कहा है क्या? अरे तू तो अभी लेकिन राशि के घर गई थी ना। अरे वो तो तेरी बड़ी अच्छी सहेली है। अरे बेटा क्या बात हुई, बताना।
मम्मी, पापा कब आएंगे? मुझे ना उनसे कुछ बात करनी है।
बात करनी है? अरे क्या बात करनी है?
मम्मी वो राशि है ना, राशि, वो ना ट्यूशन जा रही है।
अच्छा,
IAS की तैयारी के लिए। अरे अपने शहर में एक ना प्रभाकर सर हैं, वो IPS IAS की बहुत अच्छी तैयारी करवाते हैं।
अच्छा?
अरे उनकी ट्यूशन क्लास का बहुत नाम है मम्मी। और पता है आपको, सबसे ज्यादा सिलेक्शन वहीं के स्टूडेंट्स के होते हैं। मम्मा मुझे भी क्लास ज्वाइन करनी है, आप ना प्लीज पापा को बोलो ना।
अच्छा तो ये बात है, ठीक है, शाम को पापा जैसे ही आते हैं ना मैं उनसे बात करके देखती हूँ, लेकिन तू चिंता मत कर।
हाँ।
और उदास मत हो मेरा बेटा, तुझे उदास देखती हूँ तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मेरी सुंदर सी खूबसूरत सी प्यारी सी बेटी, ऐसे मुंह लटका के रखोगी तो सुंदर नहीं दिखोगी।
गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा हमारे देश की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन परीक्षाओं में से एक होती है। देश के करोड़ों युवा IAS बनने का सपना देखते हैं, परंतु इसकी परीक्षा प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए इसके लिए सफलता के लिए एक अच्छी रणनीति के साथ एक अच्छी तैयारी की भी आवश्यकता पड़ती है। अब हम आपको बताते हैं इस परीक्षा के लिए तैयारी किस तरह की जाए। ये माना जाता है कि इस परीक्षा की तैयारी के लिए 2 या 3 वर्ष का समय पर्याप्त होता है, लेकिन विद्यार्थी को यदि विषय वस्तु की आधारभूत समझ नहीं है, यानी कि बेसिक नॉलेज नहीं है, तो स्टूडेंट्स को इस परीक्षा में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। यदि 2 या 3 साल में स्टूडेंट्स इस परीक्षा पर अच्छा फोकस देकर अच्छी तैयारी करने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं तो यह बहुत अच्छी बात होगी। ये समय IAS की परीक्षा हेतु पर्याप्त माना जाए। अब आप पूछेंगे कि विषय वस्तु क्या होनी चाहिए इसके लिए। यदि स्टूडेंट सही विषय वस्तु का चयन करता है।
अरे आ गई खुशी।
मम्मी 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 मम्मी।
अरे क्या हुआ?
अरे सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि क्या बताऊं, अरे पूरी क्लास में सब बच्चे दम साधे उन्हें ही देखते रहते हैं।
अच्छा?
अरे मम्मी, उनका एक एक शब्द ऐसा लगता है कि हम घोट कर पी जाएं। मम्मी, हर सब्जेक्ट पर उनकी ऐसी कमांड है कि क्या बताऊं। अरे किताब का एक पन्ना भी नहीं देखते। अरे किताब तो खोलते तक नहीं है। उनको सारी की सारी बातें, सारी की सारी चीजें मुंह जबानी याद है मम्मी। हो, मैंने तो अपने जीवन में इतना अच्छा टीचर कभी नहीं देखा। मम्मी, आज मैं समझी गुरु का मतलब क्या होता है। सच कहूँ तो उन्हें देखकर गुरु और शिष्य की भावना जागती है मन में।
अच्छा अच्छा अच्छा, अब बस कर और कुछ खा ले।
कुशिका
जी सर,
कुशिका क्लास के बाद मुझसे मिलना।
ओके सर। मैं आई कमिंग सर। जी आपने बुलाया था।
हाँ हाँ कुशिका, आओ आओ। कुशिका, तुम्हारी बैच में तुम सबसे ज्यादा होनहार स्टूडेंट हो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा सिलेक्शन जरूर और जरूर हो।
ओ सर, थैंक यू। मैं ना बहुत मेहनत करूंगी और आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगी।
दैट्स गुड, आई अप्रिशिएट इट। देखो कुशिका, मेहनत अपनी जगह ठीक है, मगर आज के समय में मेहनत के साथ साथ सेटिंग भी बहुत जरूरी है। यू नो व्हाट आई मीन। बट डोंट वरी, मैं हूं ना, मेरी ऊपर अधिकारियों से अच्छी पहचान है, अच्छी सेटिंग है, और मैं अच्छे स्टूडेंट्स का ध्यान भी रखता हूं। वैसे मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था कुशिका, क्योंकि कुशिका मैं जब से तुम्हें देखा है ना, मुझे लगता है तुम, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, तुम बहुत सुंदर हो, और कुशिका तुम मेरे दिल में बस गई हो। आई मीन कुशिका, आई थिंक आई लव यू। क्या तुम मेरे साथ बाहर घूमने चलोगी?
जी सर, वो सर मुझे समय पर घर पहुंचना होता है सर, वो मम्मी इंतजार कर रही होंगी। मैं चलती हूँ सर।
चली गई।
ओह, ये क्या हो गया कुशिका, ये क्या हो गया। सर को मैंने क्या सोचा था और क्या निकले। वैसे राशि ने बताया था कि उनका ना कैरेक्टर ठीक नहीं है। छे, अब क्या करूं। पापा ने कितनी मुश्किल से फीस के 30,000 रुपए जुटाए थे। क्लास तो नहीं छोड़ सकते कुशिका। मम्मी को बताऊंगी तो वो भी क्लास नहीं जाने देंगी। क्या करूं क्या करूं।
कुशिका, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया।
किस बात का सर?
मैंने तुमसे कहा था बाहर घूमने के लिए।
देखिए सर, मैं किसी के साथ ऐसे बाहर बाहर नहीं जाती।
क्यों?
क्यों का क्या मतलब सर? मुझे लगता है सर आपको अपनी हद में रहना चाहिए।
कुशिका, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो। मैं चाहूं तो एक मिनट में तुम्हारा कैरियर चौपट कर सकता हूं। कहीं की नहीं रहोगी तुम, कोई एग्जाम नहीं दे पाओगी आगे, समझी?
सर समझ तो आप जाइए। मैंने यदि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली और मीडिया के सामने आपका इस सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया ना, तो आप ये बताइए कि आपका करियर कहां जाएगा। चौपट तो आप हो जाएंगे, समझे ना सर?
क्या कहा, मीडिया? क्या हो गया है आजकल की इन लड़कियों को, हाथी नहीं आती।
कलयुग के शिक्षक, अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे संतोष जोशी, समता बोरेकर और भवानी कौल। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।